हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की श्री श्री राधा दामोदर की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयते ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिले विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः सङ्कर्षणकारणतसायि गर्भोदसायि च पयोधिसायि शेषस्य जस्यां सह सकलसनित्यानन्दाक्षररामं शरणं ममास्तु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराध वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। दामोदर लीला के अंतिम दिवस में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने ही घर में दधि मटके को फोड़ कर माँ से दूर भाग रहे थे और दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन को खाते हुए और खाने के साथ साथ बंदरों को भी उस माखन को खिला रहे थे, बांट रहे थे। इस प्रकार से हम लोगों ने कल श्रवण किए थे। भगवान माखन खा रहे थे और मैया यशोदा ने आकर देखी कि यहाँ पर मटका टूटकर पूरा दही फैला हुआ है। मैया ने देखकर हंसने लगी। जहाँ से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैया हंस रही, मैया आकर देखी, देखी तो वहाँ पे मटका फूटा हुआ है, चारों तरफ दही जो है बिखरा हुआ है और छोटे छोटे पैरों के निशान वहाँ पर पड़े थे। और ये सब को देखकर माँ ने हंसने लगी। माने क्यों हंसने लगा? जहाँ सतम चापे न तत्र पश्यन्ति, सातवें नंबर श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। माने आया और आकर देखा कि अरे चारों तरफ दही फैला हुआ है और तुरंत ही जान गए कि ये लाला का काम है। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये लाला का काम है तो उनको हंसी आने लगी, हंसने लगी। जहाँ सतम चापे न तत्र पश्यन्ति, क्योंकि पैरों का निशान था और लाला ने वहाँ नहीं थे, यह देखकर हंस रही थी। और क्यों हंसने लगी? आप लोगों ने देखे होंगे संसार में जब भी छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, बड़े हो रहे हैं, अगर उस समय कुछ ऐसे चालाकी पूर्वक कार्य करते हैं, नहीं तो कुछ भारी पदार्थ उठा लेते हैं, नहीं तो अचानक चलने लग जाते हैं, तो माता पिता बहुत ही खुशी होती है माता पिता को कि मेरा बच्चा सही सलामत है। जैसे कि भगवान की लीला में हम लोग देखते हैं, भगवान ने करवट नहीं बदला था, तो एक दिन अचानक भगवान ने करवट बदला था। जैसे कि बचपन में बच्चे होते हैं तो ऐसे चित होकर सोए हुए रहते हैं अपने पीठ के बल पर, और कुछ दिनों के बाद उन लोग बच्चों ने करवट बदलते, करवट बदलना मतलब पलट जाना या पेट के बल पर सोना या एक साइड में सोना, उसको करवट बदलना कहते हैं। और इस प्रकार करवट जब भी बदले थे तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने बहुत ही आनंद हुए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि बाबा और माँ सोचने लगे कि अभी जो मेरा बेटा जो है सही सलामत है। तभी तक माँ और पिताजी को ये शंका रहता है कि मेरा पुत्र का या मेरा संतान का जो हाथ पैर है, शरीर है, सही सलामत है कि नहीं, अपांग तो नहीं है। और जब तक बोलता नहीं है बच्चा तब तक और एक डाउट रहता है, बोलेगा कि नहीं, गूंगा तो नहीं हो जाएगा, कभी कभी ऐसा शंका रहता है किसी किसी को। और जैसे ही बोलना शुरू कर देता है, करवट बदलता है हाथ पैर, और उसके कानों के साइड में बजाते हैं घुंघरू इत्यादि, और ऐसे देखने लगता है आवाज़ को देखकर, तो माँ बाप बहुत ही आनंद होते हैं कि मेरा बेटा सही सलामत है, सुन भी रहा है और बोलना भी शुरू किया है, हाथ पैर सही है, इस प्रकार से। तो अभी लाला ने जब ये मटका को फोड़ दिया, कैसे फोड़ा था, बहुत ही चालाकी से मटके की पेंडी में मारा था वो शिला पुत्र को लेकर, और पेंडी में मारा और चारों तरफ दही बह गया, और उसको शिला पुत्र को एक कोने में फेंक कर और जाकर दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में जाकर दही माखन खा रहे थे। तो मैया ने सोचा कि मेरा बेटा अभी चालाक भी है, सब कुछ तो सही सलामत है, अभी मैं सोच रहा था कि चालाक नहीं, चालाक भी है, अभी बुद्धि आ चुकी है, देखो ऊपर मारेगा तो आवाज आएगा, ये सोचकर उसने पूरा नीचे मारा है ताकि आवाज ना सुनाई पड़े, इतना चालाक है मेरा बेटा। यह सोचकर मैया ने बहुत ही प्रफुल्लित होने लगी, आनंदित होने लगी, इसीलिए हंस रही थी। माएं तो जब देखते हैं बच्चों का करतूतों को तो अपने से हंसने लगते हैं। और क्यों हंस रही थी मैया ने, मैया सोच रही थी देखो भगवान का कैसा लीला है, मैंने थोड़ा सा दूध बचाने के लिए कोशिश किया, मेरे बेटे को अतृप्त करके रख कर और थोड़ा सा दूध बचाने गई, और यहाँ कितना सारा नुकसान हो गया, पूरा दही मटका ही तोड़ दिया। उन्होंने स्वयं बोल रहे थे लाला ने कि देखो ये थोड़ा सा दूध बचाने के लिए जा रही है, आज मैं इसको दिखा दूंगी माँ को कि मैं कितना नुकसान करता हूँ। और ये सोचकर मटका फोड़ा था, और माँ को भी ऐसे ही विचार आया, अरे मैंने थोड़ा सा दूध बचाने के लिए प्रयास किया और इधर भगवान ने कितना नुकसान कर दिया। कभी कभी हमारा जो विचार होते हैं, हम बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं मगर जो प्राप्य वस्तु है वो भी नष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक आता है नीति शास्त्र में, याद नहीं, उसमें इस प्रकार बताया जाता है, जो वस्तु हाथ में मिला हुआ है उसको स्वीकार ना करके अगर व्यक्ति दूसरे वस्तु के लिए लोभ बस उसके पीछे भागता है तो ये वस्तु भी नहीं, वो वस्तु तो मिलता ही नहीं है, उसके साथ साथ ये जो योग्य वस्तु है, जो प्राप्य वस्तु है, वो भी हाथ से छूट जाता है। तभी माँ ऐसे सोच रही है, हाँ मैं थोड़ा सा बचाने के लिए गई और भगवान ने देखो कैसा किया, नसीब में ये पूरा इतना नुकसान लगे थे। और असलियत तो नंद रानी को ये थोड़ा सा दही का नुकसान का थोड़े ना तकलीफ देने वाला, ये तो राजा का पत्नी है, नंद राजा की 900,000 गाय थे, मगर ये ऐसे सोच रही थी। और खास करके उनका विचार, उनका हंसी केवल अपने पुत्र की इस प्रकार की करतूतों पर था कि कितने चालाकी से उसने मटके को फोड़ दिया। इसलिए भग्न विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः, आप स्वसुतस्य यानी अपने पुत्र के कर्मों पर जहाँ सतम चापी न तत्र पश्यति, जहाँ से अर्थात हंसने लगी, अपने पुत्रों की कर्मों को देखकर उसने हंसने लगी, माता ने हंसी। मगर इधर ये क्या कर रहे हैं हमारे लाला जी, उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर एक उखल को पलटे और उखल के ऊपर चढ़कर सीके में रखा हुआ सिचिस्थितम का अर्थ होता है सीके में रखा हुआ, सीका जानते हैं जो लोग गांव से आए हैं, सीका का अर्थ होता है एक रस्सी का ऐसे ऐसे जाली जाली जैसा रहेगा, वो ऊपर लटकाए हुए रहेंगे, उसके अंदर मटके में बहुत सारा सामान रखते हैं, खास करके गांव में माता हैं बच्चों से दूर रखने के लिए, बिल्ली से दूर रखने के लिए पदार्थों को उस जगह पर रखते हैं, बिल्ली बच्चों से, खास करके गाँव में जो घर हैं ज़्यादातर खुले रहते हैं, दिन में कभी कभी कुत्ते और बिल्लियाँ भी घूमते रहते घर के अंदर भी, और बच्चे भी कभी कभी ले लेते हैं इस प्रकार के पदार्थों को छुपाने के लिए, माएँ और सिक्के के ऊपर रखे रहते हैं वो सबको, उसका सिक्का सिक्का कहते हैं उसको, संस्कृत में कहते हैं कि सिची। सिची स्थितम का अर्थ होता है, स्थितम का अर्थ है रखा हुआ, किसके ऊपर, सिची के ऊपर, सिक्के के ऊपर, सिक्का के ऊपर रखा हुआ मटके में से माखन निकाल निकाल कर खा रहे हैं। भाव यह है कि रो रो के मेरा भूख, मेरे को भूख लग रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए मैं बासी माखन खा रहा हूँ और मैं नुकसान करूंगा और ये खाऊंगा भी और बंदरों को भी बांटूंगा। यह सोच करो, मरकाय कामम ददतम, मरकाय कामम यानी बंदरों को जो इच्छा था उसको देना। कोई अगर ब्रज में गए होंगे, आप लोग देखे होंगे ब्रज में ये बंदरें बहुत प्रसिद्ध हैं, ये माखन और दही लाला ने खिला खिला के उनको इतना उद्धत मचाते हैं, वो लोग पूरा सबका चश्मा छीन लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं ब्रज में, खास करके वृंदावन में, क्योंकि ये लोग किसके साथ रह के आए हैं, ये नटखट लाला के साथ, इसलिए ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो भी ऐसे ही करते थे लाला ने, किसी का कुछ तोड़ देते, किसी का घर में कुछ ले लेते थे, और ये भी अगर देखते हैं देखते हैं आँख में पहना हुआ चश्मा भी छीन के ले लेते हैं बंदर ब्रज का, वृंदावन का, ऐसे बंदर है। उन लोगों को उन्होंने खिला रहे थे। हयंग चौर्य विसंकित नेत्रम, अपना जो उसके साथ साथ उनके अंदर भय भी था, भय किस लिए था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, मैया का मटका तोड़ दिए थे, इसलिए चौर्य विसंकिते क्षणम, चौर्य विसंकिते क्षणम का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, चुराने के कारण संकित हुआ, यानी वो चोरी किया था या ऐसा अपराध किया था, इसके कारण जो चोर होते हैं वो डरे हुए रहते हैं, कोई देख तो नहीं ले रहा है या कोई पकड़ लगा, ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, तो इसको डर था कि मैया ने डांटे गया, मारे गया, बहुत बड़ा अपराध किया था, तो बंदरों को बांट भी रहा था और इधर उधर देख भी रहा था, लाला ने ये कार्य कर रहे थे। उस समय तामात यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वरह स्ततो अवरुह्य अपससार भीतवत गोप्यन्य धावन यमाम योगिनाम क्षमम प्रवेशनु तपसे रितम मनः। तमात यष्टिम, तम ताम का अर्थ होता है माता यशोदा के, आत यष्टिम का अर्थ होता है हाथ में छड़ी को देखकर, प्रसमिक्ष, प्रसमिक्ष का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण इक्ष, इक्ष का अर्थ होता है देखना, और प्रसमिक्ष का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण देखना। प्रकृष्ट रूपेण देखने का अर्थ है मैया ने अपने छड़ी को वो छुपा कर ला रही थी और ये इधर उधर देख रहे, तो देख लिए छड़ी को, दिख गई इसको, और बहुत अच्छी तरह से दिख गया कि छड़ी लेके आ रही है, आज मेरा तो हालत खराब कर देगी ये। गोप्यन्य धावन यमाम योगिन, तो ये जैसे ही देखे हैं तो अवरुह्य उससे उतर कर और चले भाग, अपससार भाग चले, और उनके पीछे पीछे माता यशोदा ने भागने लगी, और भागते भागते माता यशोदा ने लाला की तरह नहीं भाग पा रही थी, क्योंकि लाला बहुत पतले थे और छोटे बच्चे थे और बहुत तेज पटक पटक भाग रहे थे। मैया ने अपने शरीर, अपने स्तनों की भार के कारण वो ज्यादा तेज नहीं भाग रही थी, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अपने शरीर और स्तनों की भार के कारण वो सुमध्यमा धीरे धीरे चल रही थी। लाला ऐसे भाग रहे थे कि थोड़ा रुक रहे थे और जैसे कि माँ नजदीक आ रही थी फिर भाग रहे थे, ऐसा नाटक कर रहे थे, जैसे कि माँ सोच रही थी पकड़ लूंगी अभी पकड़ लूंगी, इस प्रकार से कथा हम लोगों ने कल श्रवण किए थे, और ऐसा पीछे भागते भागते बहुत दूर तक भगा लाला ने अपने घर में घूमे, अपने गली में, पूरा गोकुल में घुमाने लगे मैया को। ये रानी थी, ये नंद बाबा की पत्नी, ज्यादातर बाहर नहीं निकलती थी, मगर आज तो लाला के पीछे पड़ी गई उसको पकड़ने के लिए, और लाला भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और मैया ने जिद पकड़ ली कि इसको पकड़कर आज तो दंड देना ही पड़ेगा, मेरे को बहुत नटखट हो चुका है। इससे ये पता लगता है कि माताएं और जो पिता होते हैं, कितने भी पुत्र स्नेह हो, इस आजकल की इस प्रकार के भौतिक संसार में जो पुत्र स्नेह या संतान प्रीति होता है, इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि पुत्र या संतान कोई भी चीज हमको मांगे या कोई भी कार्य करे हम चुप हो जाएं। कभी कभी हम देखते हैं संसार में, अगर किसी को एक पुत्र होता है या कुछ कुछ पुत्रों के बाद एक पुत्र बहुत दिन के बाद मिलता है या संतान की प्राप्ति होती है, तो माँ बाप बहुत ही आसक्त हो जाते हैं संतान से, इतना आसक्त हो जाते हैं कि हद से ज्यादा, वो कुछ भी करे कितना भी ऐसा बच्चों को हमने देखा कि अपने माता पिता को गाली देता है वो, बड़ों का अनादर करता है, हर समय रुख सर स्वर से अपना माता और पिता का व्यवहार करता है, फिर भी माता पिता उसको सुधारने की या उसको डांटने की शिक्षा देने की प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ तक भी भक्तों में भी ऐसा दिखाई पड़ता है। इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि पुत्र प्रेम में, अगर ये तो असली पुत्र प्रेम नहीं है, असली संतान प्रेम नहीं, असली संतान प्रेम वो है, ये कैसा प्रेम है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और उसके कोई व्यक्ति उसको कपड़ा का पकड़ कर उसको उठा रहा है, मतलब वो कपड़ा उठेगा थोड़ी ना व्यक्ति उठेगा, व्यक्ति तो डूब ही जाएगा ना। तो ये पुत्र प्रेम भौतिक दृष्टि से ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि प्रेम है, मगर ऐसा प्रेम नहीं। असली प्रेम तो वो है, संतान अगर कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसको डांट कर, समय के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उस हिसाब से उसको डांट कर, दंड देकर उसको सुधारना चाहिए। नहीं तो जब भी बड़ा हो जाएगा बेटा या पुत्र या संतान, तब हमारे हाथ से निकलेगा, तब सिर को घुटनों में रखकर रोना पड़ेगा कि बेटा या पुत्र हमारा सुन नहीं रहा है करके। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं कहते हैं कि हमारा पुत्री, हमारा बेटी, हमारा बेटा नहीं सुन रहे हैं, अपना मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कोई और नहीं है, माँ बाप खुद हैं। अगर बचपन में कोई चीज़ को हम नहीं सुधारेंगे तो बड़े होकर थोड़े वो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। भगवान को भी सुधरने लगी देखिए उनकी माँ ने, सोचने लगी आज तो दंड दे के ही रहूँगी, अगर दंड नहीं दूंगी तो ये आगे जाकर और नटखट करेगा, और नटखटपन मचाएगा, इसलिए आज दंड देना ही चाहिए। इसलिए हम लोगों को भौतिक दृष्टि से इतना अंधा ना होकर पुत्रों के, पुत्र और संतान की प्रेम में हम लोगों को उनको अच्छा संस्कार सिखाएं, बड़ों से कैसा बात करना, किसके घर में किस प्रकार से रहना, माता पिता से कैसा व्यवहार करना, ये सब चीज़ों को सिखाना चाहिए ताकि वो लोग बड़े होकर ना बिगड़े। उसके बाद वाले श्लोक यहाँ पे हम रुक गए थे, माता ने पीछे पीछे दौड़ रही थी और बहुत देर दौड़ाने के बाद लाला ने देखा कि अभी मैया बहुत थक चुकी है, उनकी शरीर से पसीना छूट रहा है और बहुत थक चुकी है, इसीलिए वो पकड़ में आ गए। कृतागसम तम प्ररुदंत मक्षिणी कसंत मंजन श्रीणी स्वपाणी नाम उद्दीक्षमाण भयव्यूहले क्षणम हस्ते गृहीत्वा भिषयंत बागुरत। और जैसे ही माँ ने पीछे से लाला की पहना हुआ कपड़ा या अलंकार को पकड़ ली तो लाला ने रुक गए, और जैसे ही पकड़ में आ गए और जोर जोर से रोने लगे। और रुक कैसे रो रहे हैं, अपने हाथों से दोनों आंखों को मसलते हुए रो रहे हैं। इसी स्थिति को हम लोग दामोदर अष्टकम में भी प्राप्त करते हैं। रुदंतं मुहुर् नेत्र युग्मं मिजन्तं करांभोज युग्मेन सातांक नेत्रं मुहुर्श्वास कंपात्रि रेखांक कंठं स्थितग्रेव दामोदर भक्तिपदं। रुदंतं मुहुर् नेत्र युग्मं मिजन्तं, अपने दोनों आंखों से रो रहे थे और दोनों हाथों से दोनों आंखों को मुंह करके मसल रहे थे, और माँ ने जैसे ही पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगे। ऐसा जोर जोर से रोने लगे जैसे कि धक धक होते हैं ना, जैसे कि अगर ज़्यादा डर जाता है बच्चा, नहीं तो ज़्यादा देर तक बच्चा रोता है तो धीरे धीरे उसका चिल्लाना और रोना कम होते होते आंसू ज़्यादा आएगा और उसका बॉडी ज़्यादा हिलने लगेगा, ऐसा होने लगेगा। तो ऐसा हो रहे थे, जब ऐसा हो रहे थे तो उनका जो कंठ है वो पूरा त्रिरेखा युक्त हो चुका था ऐसा, और उसमें जो मोतियों का माला है बहुत सुंदर दिख रहा था। मुहुर्श्वास कंपा त्रिरेखा युक्त त्रिरेखांक कंठम स्थितग्रेव दामोदर भक्तिबद्धम, उस प्रकार की दामोदर भगवान है करके दामोदर अष्टकम में बताया जाता है। तो भगवान को जब भी माँ ने पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे, माँ पकड़ी तो कैसा पकड़ी, जैसे पकड़ ली और भगवान और जोर से रोने लगे, और रोने लगे आंख मसल रहे थे, क्यों, क्योंकि वो सोच रहे थे मैं अगर ज़्यादा रोऊंगा तो मैया को प्रेम आ जाएगा, पुत्र प्रेम आएगा और शायद मेरे को न मार कर, दंड ना देकर गोद में ले लेगी और दूध पिलाने लगेगी, क्योंकि पहले ऐसा करती थी मैया, कभी भी नहीं डांटती थी। जो गोपियों ने जब उल्हाना देते थे तो ये झूठा झूठा मुंह सुख खा देते थे और मुंह सूखा देते तो मैया को अच्छा नहीं लगता था सूखा हुआ लाला का मुंह देखने के लिए, तो मैया ने गोद में लेकर उनको दूध पिलाने लगती थी, प्रेम करने लगती थी। यह सोचकर लाला ने ज़्यादा नाटक किया कि अभी ज़्यादा रोऊंगा तो मैया ने गोद में ले लेगी मेरे को। मगर मैया आज तो बहुत कठोर थी, तो आज मैं शिक्षा दे के रहूँगा ऐसे सोच रही थी मैया ने। इसलिए जितना भी रोया मैया ने गोद में नहीं ली, उल्टी क्या की, एक हाथ को पकड़ ली, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे मचल रहे थे तो एक हाथ को पकड़ ली। अभी एक हाथ को पकड़ कर क्या करने लगी, विषयंत बागुरत विषयंती धमकाती हुई, अब आगुरत बहुत धीमे से डांटने लगे, जोर से नहीं ऐसे पकड़ती, क्यों तुमने फोड़ा ऐसा, जोर से नहीं डांटी, क्योंकि पहले से डरा हुआ है ना बच्चा, और छोटा बच्चा है और पहले से डरा हुआ है, हाथ में छड़ी है, कभी माँ ने छड़ी नहीं ली थी, और अचानक इतना जोर से अगर डांटने लग जाएगी तो क्या हालत होगा। तो यह सोचकर माँ ने पकड़ ली उसको एक हाथ से और धमकाती हुई और धीरे धीरे से डांटना शुरू की, बहुत धीमी से डांटा, रूपा जी लिखते हैं धीरे धीरे से डांटना शुरू किया। क्या डांट रही थी, डांटी होगी, तुमने ऐसा क्यों किया, रे बानर बंधु, बंदरों का दोस्त बनाने वाला, रे बानर बंधु, गृह लुंठक का तो घर को लूटने वाला, तू ऐसा क्यों कार्य करता है, हमेशा मेरे को परेशान करता है, तुम्हारे वजह से मैं रानी होके सारे दासियों का गोपियों का बातों को सुनना पड़ता है, मंथनी विस्फोटक, दही दधी का मटके को फोड़ने वाला, गृहलुंठक, मंथनी विस्फोटक, इस प्रकार से बहुत सारे बातों को डांटने लगी। और डांटते डांटते बोली होगी, अब तो तुमको मैं दंड दूंगी और मैं तुमको अभी बच्चों के साथ खेलने नहीं दूंगी, तुमको माखन नहीं खिला आऊंगी, माखन कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने तोड़ दिया, फोड़ दिया मटके को, और बच्चों के साथ तुमको खेलने अभी छोड़ूंगी नहीं, और यहाँ पे तुमको बांध के रखूंगी। और ये सुनकर तो अभी और जोर से रोने लगे, क्योंकि वो किस में आनंद लेते थे ज़्यादा, बच्चों के साथ खेलने में और माखन चुराने में, खेलने में तो कम, माखन चुराने में ज़्यादा आनंद आता था उनको। और अभी बोले कि माखन खिलाने के लिए दूंगी तो नहीं, बच्चों के साथ खेलने भी नहीं छोड़ूंगी, और उनका सबसे बड़ा खेल यही था चोरी करना। तो ये जैसे सुने कि अरे बाबरे, मेरे को तो ये अभी खेलने भी नहीं छोड़ेगी और माखन भी नहीं खिलाएगी, ये सुनकर और जोर जोर से भगवान ने रोने लगे, लाला ने रोने लगा। तो जैसे इसमें लिखा गया कि मैया ने पकड़ लिया, मैया ने भगवान को पकड़ लिया, इस बात पर श्री प्रभुपाद जी ने अपने टीका में लिखते हैं कि यही भक्त और योगियों के बीच में अंतर है। मैया ने लाला को दौड़ते हुए पकड़ लिया, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहते हैं योगी और भक्तों के बीच में यही अंतर है। योगी जो है बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, सदियों तक कठिन तपस्या कर भी जिन भगवान की ब्रह्म तेज में भी प्रवेश करना मुमकिन नहीं होता है, मगर उस भगवान भक्तों के घर में खेलते हैं और भक्त उनको पकड़ने के लिए, दंड देने के लिए उनको भगाते हैं, ऐसे भक्ति, ये भक्ति हैं। श्री भगवान को पकड़ने का एक ही रास्ता है, प्रभुपाद कहते हैं वो ना योग है ना ही शास्त्रों का अध्ययन, केवल कृष्ण भक्ति ही के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्त्या माम अभी जानाती, भगवान स्वयं भी भगवद गीता में कहते हैं केवल भक्त ही मेरे को जान पाएगा, ना ही विभिन्न प्रकार के मनोकाल्पनिक कथनों से या शास्त्रों के अध्ययन से, ना ही विभिन्न प्रकार के हट योगों से ना ही तर्क शास्त्रों से, किसी से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता है, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को स्वयं भी कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाती, केवल भक्त ही मेरे को जान सकता है। इस प्रकार से भगवान और जोर जोर से रोने लगे मैया की डांट को सुनकर और ये डरावनी को सुनकर। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाया अर्भक वत्सला ये स किरंतम बुद्धम दामना तर दिय को विदा त्यक्ताम यष्टिम त्यक्त्वाम। त्यक्तम का अर्थ होता है फेंक कर, त्याग कर। क्या त्याग दिया, क्योंकि हाथ में छड़ी था इसीलिए लाला ने बहुत जोर से रो रहे थे, और अभी कौन ऐसी माँ है जो कि पुत्र की इतना रोदन को या इतना दुख को सह पाएगी, और वो भी पुत्र प्रेम में, पुत्र प्रेम का पराकाष्ठा यशोदा मैया वो कैसे सह सकती थी लाला की इस प्रकार की रोदन को, लाला की इस प्रकार का डर की भावनाओं को देखकर। भले ही नाटक कर रहे थे लाला ने, मगर माता ने इस दुख को देखकर अपना यष्टिम, यष्टिम का अर्थ होता है छड़ी, उसको फेंक दिया। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग देना, फेंक दिया। सुतम भीतम, सुतम का अर्थ होता है पुत्र, भीतम का अर्थ होता है भय। पुत्र का भय को देखकर माता ने अपना यष्टि अर्थात छड़ी को फेंक दिया। और क्या किया, इसे तो कीड़म तो बद्धम दामना तो हृदय कोविदा, अपना पुत्र सोचकर, अपना पुत्र सोचकर, अपना पुत्र मानकर उनको दंड देने के लिए इसे ये का अर्थ होता है दंड देने की इच्छा से। कीड़मतम, कीड़म का अर्थ होता है कैसा दंड देना चाह रही थी, उसको बांधना चाह रही थी। कीड़म का अर्थ होता है बांधना, बांधना चाह रही थी। क्यों बांधना चाह रही थी, क्योंकि माता यशोदा को यह नहीं मालूम था कि ये जो लाला है यही स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान है, इस संसार का पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता यही है, पालन करता यही है, इनके डर से ही जम और सूर्य चंद्र इत्यादि अपने अपने नियत कार्यों को कर रहे हैं, ये मालूम नहीं था। इस बात का पता यशोदा मैया को नहीं था। यशोदा मैया को तो केवल इतना ही मालूम था कि ये बच्चा जो है विज्ञया अर्भकवत्सला, अर्भकवत्सला करता पुत्र स्नेह से, क्योंकि उसको अपना पुत्र ही मान रही थी, और इतना स्नेह था कि वो स्नेह के कारण उसको बांधना चाह रही थी, गुस्से से नहीं, क्रोध से बांधना नहीं चाह रही थी। इतना प्रेम उभर आ रहा था कि मेरा बेटा बिगड़ते जा रहा है, अभी मैं क्या करूं, अगर इसको दंड नहीं दूंगा तो ये और ज्यादा बिगड़ जाएगा, ये सोच रही थी। ये पुत्र स्नेह कहा जाता है, वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। इस भाव में इसे तो इच्छा करने लगी, कीड़मतम, कीड़मतम का अर्थ होता है उसको बांधने की इच्छा करने लगी। बद्धम दामना तद्वीर्य कोविदा, क्योंकि अतत वीर्य कोविदा, क्योंकि भगवान के तत् यानी भगवान के वीर्य, वीर्य का अर्थ होता है बल के बारे में माता को कुछ मालूम नहीं था। भगवान कितने बलवान हैं, वो कितने विस्तार हैं, ये सब के बारे में माता को मालूम नहीं था, इसीलिए उसने बांधने के लिए सोची। नहीं तो कौन ऐसा व्यक्ति हो कि स्वयं भगवान को बांधने के लिए सोच सकता है, क्योंकि ये बात उनको मालूम नहीं था कि ये मेरा पुत्र मान रही थी, इसलिए उनको बांधने के लिए प्रयास करने लगे। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहते हैं, माँ ने बांधना क्यों चाहा, माँ के बाहर की भावना ये था कि अगर इसको बांधूंगी नहीं, अगर दंड नहीं दूंगी तो ज्यादा बिगड़ जाएगा, मगर अंदरूनी भावना क्या था, अंदर माँ का इच्छा क्या था, क्योंकि उसने डांटा था उसको। किस प्रकार डांटा था, उसको बोला था कि लाला को बोले थी माँ ने कि तुमको बच्चों के साथ खेलने नहीं दूंगी और माखन लेंगी और बांध दूंगी तुमको, अगर बांध के रख देगी। लाला ने सोचने लगा कि अभी मेरे को माखन चोरी करने नहीं मिलेगा और खेलने नहीं मिलेगा, और खेलने के बिना, बच्चों के साथ खेलने के बिना, माखन चोरी करने के बिना लाला रह नहीं सकता है। और मैया की डांट सुनकर हो सकता है बच्चे को क्रोध आए, अभी तो क्रोध के कारण, गुस्से के कारण मटका फोड़ दिया, कितना दौड़ाया मेरे को, और अभी मेरा डांट सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा तो मेरा बेटा, यह सोचने लगी मैया ने, घर छोड़ के भाग जाएगा जंगल में, जंगल में शेर शेरनी है, बहुत सारे पशु हैं, मेरे बच्चे को खा जाएंगे, यह सोचने लगे। और इसको रखूंगी तो कैसा, पकड़ कर तो कितना देर इसके साथ रहूंगी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ, अगर बांध दूंगी तो कहीं हिल नहीं पाएगा और थोड़ी देर के बाद इसका गुस्सा शांत हो जाएगा और भागेगा नहीं, मैया ने यह सोचने लगी। कहते हैं प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि मैया सोचने लगी कि ये भाग जाएगा घर छोड़कर, इसलिए मैं इसको बांधना चाहती हूँ ऐसा। और तत्वीर्य को विदा का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैया को ये मालूम नहीं था भगवान का कितना अनंत बल है, और उसने तो केवल अपने भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही थी, इसलिए बांधना चाह रही थी। अभी इस बांधने के ऊपर क्यों, भगवान को बांधने के ऊपर सुखदेव गोस्वामी अपना टीका कहते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार की व्यक्ति को बांधना चाह रही थी मैया ने, आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य की बात है, न चांत्र बहिर यश्य न पूर्व न पिचापरम, पूर्वापरंग बहिश्चांत्र जगतो यो जगस्य तं मत्वात्मज मत आत्मज व्यक्तं मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिको उखले दामना बवंद प्राकृतम यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिनका कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है, ना ही उनका कुछ बाहर है ना कुछ भीतर है, ना ही उनका कुछ आगे है ना पीछे है, वो दूसरे शब्द में उनको सर्वव्यापक कहते हैं। चूंकि काल की तत्व के वशीभूत नहीं है, अतएव उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूपों में रहते हैं, सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हैं, होते हुए भी कारण कार्य के अंतर से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियों तीत हैं, यानी अपने इंद्रियों से परे हैं, भौतिक इंद्रियों से, अब माननीय मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः मैया यशोदा ने उन्हें अपना सामान्य बालक समझकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया, बांध दिया। सीधा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बांध दिया। किसको बांध दिया? जिस व्यक्ति का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। आदि का अर्थ होता है जन्म या शुरुआत, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अनादि उनका कोई आदि नहीं है, आदि वही सबके आदि है, उनसे ही ये सारा संसार जीव जगत जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ रहा है और जो कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है वो आदि हैं और उनका कोई आदि नहीं है, इसीलिए उनको कहते हैं अनादि। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है भगवान। जो कुछ भी भल अच्छा चीज या बुरा चीज जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे जीवन में संसार में, इस सब के पीछे केवल एक ही जन का हाथ है, कारण है, हाँ, वो है भगवान स्वयं। इस प्रकार के व्यक्ति को मैया ने बांधने चली और कहते हैं उनके अंदर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। अंदर कुछ नहीं का अर्थ क्या है और बाहर कुछ नहीं का अर्थ क्या है? क्या बाहर कुछ नहीं था? लाला के बाहर, लाला के बाहर माँ तो खुद थी, रस्सी था, लाला के बाहर पूरा घर था, गोकुल था, वृक्ष था, गौवे थे, गोपियां थे, बहुत सारा लाला के बाहर ही तो था ना। लाला तो छोटा सा बच्चा था माँ के पास में, माँ तो उसको पकड़ लेती, एक हाथ से रो रहा था, उसको बाहर नहीं था, सब कुछ था बाहर। तो सुखदेव गोस्वामी का क्या भाव है कि वो कहते हैं कि लाला के बाहर कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं और जिसके अंदर कुछ नहीं, क्या अंदर कुछ नहीं है? सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं बाहर कुछ नहीं का अर्थ क्या है कि ये सारा संसार जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है वो लाला के अंदर है। ये कैसा सिद्ध होता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना था ये कथा कि पहले अध्याय में लाला ने मिट्टी खाया था, मिट्टी खाया तो माँ ने घुसे, माँ को बोला कि मैंने खाया नहीं, तो माँ ने बोली क्या खाया नहीं, तो भाई बोल रहा है, दोस्त तुम लोग, तेरा ही दोस्त बोल रहा है, ये क्या झूठ है? ना मैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मिट्टी नहीं खाए, सभी झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो मेरा मुख देखिए सामने, मैं खोलो मुख, तो खोलने लगे, और जैसे ही मुख खोलने लगे तो मुख के अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाई देने लगी। यहाँ तक भी खुद लाला और मैया यशोदा भी उसके अंदर हैं, और माँ तो देखकर ये आश्चर्य हो गई। वो सोचने लगे कुछ क्षण के लिए कुछ किसी राक्षस का काम तो नहीं है ना, या मेरा भयम है ये, या मेरा ऐसा चिंतन है, इस प्रकार से बहुत सारा बातों को सोचने लगी। अंततः तो सोचने लगी कि हो सकता है मेरा पुत्र जो है विष्णु का कुछ शक्ति उसके पास है, इसीलिए बचपन से दो बार ऐसे में देखी। तो इससे पता लगता है कि सब कुछ इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान के भीतर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लाला के बाहर कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं, और अगर सब कुछ उसके भीतर है तो कितना ये जगत है, ये पूरा जगत उसके भीतर, मतलब वो कितना बड़ा आदमी नहीं होगा, और ये पूरे संसार को अगर कोई बांधना चाह रहा है तो असंभव की बात है। और इसको, इस बात को संभव करा रही थी माता यशोदा ने, बांध दी थी उसको। और क्या करे, अंदर कुछ नहीं, लाला के अंदर कुछ नहीं है, लाला के अंदर कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो इतना मक्खन खा रहा है, दही खा रहा है, वो सब कहां जा रहा है, कुछ नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी का कहना है भगवान जो है सच्चिदानंदमय स्वरूप है, सच्चिदानंद का घन है वो, सचित और आनंद ही है। हमारे जैसा ऐसा मल मूत्र हड्डी मांस इत्यादि से इस पंच भूत से बना हुआ शरीर नहीं, भूतों से बना हुआ शरीर नहीं है भगवान का, आनंद का घन है। इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर, उनके अंदर कुछ नहीं, उनके अंदर कुछ नहीं का मतलब कोई पंच भूत नहीं है, ये भाव है सुखदेव गोस्वामी का। अंदर भी कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं मतलब सब कुछ उनके ही अंदर है, इसीलिए वो कहते हैं आदि है नहीं, उनका अंत नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, और आगे और पीछे नहीं है, यानी उनके पहले कुछ नहीं था और उनके बाद में कुछ नहीं रहेगा। ये काल की दृष्टि से, इस संसार में हम जिसको काल कहते हैं, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ, और ये काल समय को भी निर्धारित करता है, और ये काल जो सबको संहार करने वाले उसको भी, वो समय ही जो सबको संहार करता है, कालो अस्मि मतलब भगवान काल है, तो उनसे ही ये समय शुरू होता है और उनमें ही खत्म होता है, उनसे आगे भी कुछ नहीं था समय या उनके बाद में भी नहीं। हमारे भौतिक संसार के लिए समय कैसे शुरू होता है, जिस समय इस संसार को पहले तो भगवान ने ये तत्वों को बना दिया, पंच तत्वों इत्यादियों को बनाने के बाद इंजीनियर को नियुक्त किए, कौन इंजीनियर था, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, उनको नियुक्त किए, बोले कि आप इस संसार को बनाइए। उन्होंने पूरा संसार बनाया मगर हिलता डुलता नहीं है, अभी हिल डुल नहीं रहा है, ब्रह्मा जी को टेंशन हुआ, अभी हिल डुल नहीं रहा है, कैसा संसार बनाया हमें, तो फिर भगवान को प्रार्थना किए, तो भगवान ने फिर अपना दृष्टि डाले इस संसार के ऊपर, जो जिस चीजों को ब्रह्मा जी ने बनाया था, और जैसे दृष्टि डाले उनका दो दृष्टि क्या था, एक था जीव और एक था काल, और काल शुरू हुआ तभी से और जीव उसमें प्रवेश किया, तब जाके ये संसार चलने लग गया, तो वहां से ये हमारे हमारे संसार के भौतिक संसार का काल प्रारंभ हुआ। और अंत में जब चार प्रकार के प्रलयों में से अंत का प्रलय, चार प्रकार के प्रलय क्या क्या है, पहला प्रलय मृत्यु, दूसरा प्रलय जो पृथ्वी के ऊपर, तीसरा प्रलय ब्रह्मलोक तक, और चौथा प्रलय जो है ब्रह्मा जी को भी डुबाने वाला प्रलय है, उस प्रलय में सब कुछ फिर से भगवान विष्णु के अंदर चला जाएगा, इसलिए वहां पे ही समाप्त होता है, उनके बाद कुछ नहीं है। इस दृष्टि से बोलते हैं कि आगे और पीछे कुछ नहीं है। इस प्रकार की भगवान को गोपी ने बांध दी थी अपने एक छोटी सी रस्सी से, तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कैसे बांध दी थी, तम मत्वा आत्मजम व्यक्तम, मैया ने, यशोदा मैया ने या गोपी ने रस्सी के द्वारा नहीं बांधी थी, रस्सी के द्वारा बांधने वाले नहीं थे वो, तुम आत्मजम व्यक्तम, अपना पुत्र समझकर, आत्मजम, आत्मजम का अर्थ होता है अपना पुत्र, आत्मा से जात, आत्मा ये शब्द कभी कभी परमात्मा का व्यवहार किया जाता है, कभी कभी आत्मा का व्यवहार किया जाता है, और कभी कभी शरीर को व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे तुम आत्मज, आत्मज का अर्थ होता है आत्मा से जात, मतलब अपना पुत्र, अपना संतान, अपना संतान मानकर प्रेम की रस्सी से लाला को बांध दिया मैया ने, साधारण रस्सी से नहीं बांधा जा सकते थे, इस बात को, इस बात यहाँ पे व्यक्त होता है। इस प्रकार के भगवान बंध गए थे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कितना आश्चर्य की बात है, गोपिका ने उनको बता दिए। और कैसे भगवान थे, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी एक श्लोक ब्रह्म संहिता का कोट करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम न भजौवनम च वेदे सुदुर्लभ मदुर्लभ आत्म भक्त गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम, अच्युत भी है, अनादि, उनका आदि नहीं है, आदि नहीं है, अनंत है, वो अनंत है, उनका कोई भी अंत नहीं है, आद्यम सबसे, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पहले वही है, वो सबके आदि है, और पुराण पुरुष, पुराण पुरुष का अर्थ है सबसे पुराना व्यक्ति है, उनसे पुराना कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है। वेदेश दुर्लभ, और उनको वेदों के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता है। कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं कि हम शास्त्रों को बहुत अच्छे तरह से मंथन करके, शास्त्रों को अच्छे तरह से रिसर्च करके भगवान को जान लेंगे, ये उन लोगों का बेवकूफ़ी है। शास्त्रों के द्वारा भगवान को नहीं जाना सकता है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि वेदेश दुर्लभ, वेद को स्वयं भगवान ने बनाया मगर वेदों में भी, वेदों को पढ़कर भी भगवान भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है। कोई भी व्यक्ति वेदों को अच्छे से अध्ययन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ब्रह्म संहिता में, वेदेश दुर्लभ मगर अदुर्लभ आत्मभक्त। दुर्लभ का अर्थ है प्राप्त नहीं किया जा सकता, अदुर्लभ का अर्थ है प्राप्त किया जा सकता है। और किनको प्राप्त किया जा सकता है, कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? आत्मभक्तो, केवल भगवान की भक्त ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में भी, वेदों को अध्ययन करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे गोविंद जो कि आदि पुरुष है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस प्रकार की भगवान है उनको माता यशोदा ने अपना पुत्र समझकर बांध दिया, ऐसा प्रेम होना चाहिए। अभी क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी आगे क्या कह रहे हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वअर्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलन्मुद्भूतेन संददन्यश्च गोपिका। तद्दाम बध्यमानस्य स्वअर्भकस्य कृतागसः, जैसे ही इस बात को कहा, सुन कौन रहा था, सुखदेव गोस्वामी जब भी कह रहे थे तभी परीक्षित महाराज सुन रहे थे। परीक्षित महाराज ने सुना कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान, विचित्र भगवान को गोपी ने बांध दिया, और बांध दिया शब्द सुन के परीक्षित महाराज थोड़ा अंदर से सोचने लगे, या उनका चेहरा थोड़ा कुछ ऐसा हुआ रहेगा कि आश्चर्य प्रकट किए होंगे, बांध कैसे दिया भगवान को, नहीं बांधना चाहिए था, भले ही कुछ किए हैं मगर बांध कैसे दिया, इतना प्रेम था फिर भी बांध दिया। तो इस शंका को, इस प्रकार के भाव को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी तुरंत कहते हैं कि कृतागसह, उन्होंने, आगस का अर्थ होता है अपराध, कृत का अर्थ होता है किया था, अरे उन्होंने अपराध किया था इसलिए मैया ने बांधा। परीक्षित महाराज सोचे कि बांध कैसे दिया, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत रिप्लाई करते हैं कृतागस, कृतागस का अर्थ होता है उन्होंने अपराध किया था, कृत अर्थात किया था, आगस का अर्थ होता है अपराध, उसने अपराध किया इसीलिए तो बांधा मैया ने। तद्दाम बद्धमानस्य स्व अर्भकस्य, अपना पुत्र मानकर बांध दिया, उसको बांधने के लिए प्रयास किया, मगर समस्या यहाँ उत्पन्न हुआ। क्या समस्या उत्पन्न हुआ, वो जैसे ही बांधने के लिए प्रयास करने लगी मैया ने, दो उंगली उन्नम यानी छोटी पड़ गई। उन्नम का अर्थ होता है कम हो जाना, जैसे कि 19 यानी 20 का थोड़ा सा एक कम, उस प्रकार से उन्नम शब्द यहाँ पे व्यवहार किया गया है। कितना कम हुआ, द्वि उंगुल उन्नम यानी दो उंगली कम पड़ा। रस्सी वहाँ पे मैया ने अभी सोचने लगी लाला को बांध दूंगी, अभी इसको बांधना चाहिए, और ऐसा सोचकर इधर उधर देखने लगी, देखी तो वहाँ पे उखल था। ये मत सोचिए कि कभी कभी जो है ना चित्र में, पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उखल है, दही है, मटका फोड़ा हुआ है, वहाँ पे बांध रही है मैया, नहीं नहीं, वो जो उखल के ऊपर चढ़कर वो दही खा रहे थे या माखन खा रहे थे वो उखल नहीं था, क्योंकि वो उखल तो घर में था ना, तो ये उखल में से कूद कर पूरा गोकुल में घुमा घुमा कर मैया को एक कोने में ले लिए थे, वहाँ पे पकड़ ली थी बहुत दूर में। और जो लोग ब्रज में गए होंगे देखे होंगे नंद बाबा का गोकुल में, नंद बाबा का भवन से कुछ दूरी पे वो उखल बंधन का स्थान है, हमने देखा था, इतना दूर ले ली थी घुमा घुमा कर मैया को, वहाँ पे एक पुराना उखल पड़ा था और उस उखल में बांधी, और उखल को देखी और बोली कि इस उखल का सहायता से सब चोरी करता है, इसको भी इसके साथ बांध देती हूँ, यह सोचकर उखल को पकड़ी और उखल के साथ बांध दी। सनातन गोस्वामी अपने टीका में कहते हैं कि ये जो उखल था ये खड़ा हुआ उखल नहीं, ऐसे पूरा सीधा खड़ा हुआ उखल नहीं, कैसे मैया बांध सकती सीधा खड़ा हुआ उखल में बेटे को, और बांध देगी अगर बेटा ने हलचल किया या खींच लिया तो उखल बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। तो सनातन गोस्वामी अपने टीका में कहते हैं कि ये खड़ा हुआ उखल नहीं था, ये गिरा हुआ उखल था, सोया हुआ उखल था, इस उखल में लाला को बांधने के लिए प्रयास की। और किस में प्रयास की, कि हाथ में छड़ी तो नहीं था, छड़ी रख दी थी, रस्सी थोड़े ना घर से लेके आई थी, अपना केस बंधन को निकाला, अपना केस बंधन होता है माताओं का, बालों को बांधने के लिए रस्सी यूज करते हैं, इस रस्सी को निकाली मैया ने, केस बंधन को निकाल कर उस पहले उस उखल में राउंड घुमाया, फिर बच्चे लाला के पेट में घुमाया, पतला कमर था, लाला का पेट को पूरा आ गया, मगर जब भी गांठ बांधने का समय आया तभी दो उंगली कम पड़ गया रस्सी में के दो उंगली कम पड़ा। तो मैया ने सोची दो उंगली कैसे कम पड़ा, ये बंद क्यों नहीं रहा है, तो इसलिए वो तुरंत क्या की, दूसरे रस्सियों को मंगाने लगी अपने सखियों से। अभी आचार्यों ने भगवान बंद क्यों नहीं रहते इसके पीछे अपना बहुत सारे भावों को व्यक्त करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहते हैं, मानो कृष्ण कहते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये बांध नहीं सकती। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरे को कैसे बांध सकती है कोई कैसे बांध सकता है, इसलिए मैया बांध नहीं पाई थी, उसको दो उंगली कम पड़ रहा था। श्री भगवान अपने माता को अपने अनंत शक्तियां प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिए। वो पहले बहुत सारा शक्ति दिखा रहे थे, किसको, पूतना को मार दिए, तृणावर्त को मार दिए, हाँ शकटासुर को मार दिए, हाँ बहुत सारा लोगों को मार मार का है। अभी वो सोचने लगे कि मेरा तो ताकत और मेरा बल के बारे में मैं तो बहुत सारा असुरों को दिखाया, मैया को दिखाया नहीं था, अभी थोड़ा मैं मैया को भी दिखाता हूँ अपना ताकत, यह सोचकर वो बांधने नहीं दे रहे थे। ये सोचने प्रभुपाद जी अपने टीका में कहते हैं, और कुछ और भी बहुत सारे भक्त अपना अपना भावों को व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ये जो गुण है, रस्सी को गुण भी कहते हैं, गुण, गुण का अर्थ भी रस्सी है, और ये गुण का अर्थ त्रिगुण भी होता है, सत्व रजस और तम, मगर भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीन गुण से परे हैं, और ये अगर वो उनका बनाया हुआ त्रिगुणातीत त्रिगुणों से परे हैं, तीन गुण इतना शक्तिशाली है कि सारा संसार को जकड़ कर रखती है, और ये उनसे परे हैं, मगर ये साधारण सा गुण कैसे बांध सकता है, साधारण सा रस्सी कैसे भगवान को बांध सकता है, इसीलिए दो उंगली कम पड़ रहा था। और एक भक्त कहते हैं, भगवान का दृष्टि अगर जिसके ऊपर एक बार पड़ जाता है, भगवान की दृष्टि अगर भगवान एक बार किसी को देख देते हैं, तो उसके जीवन में उसके जिंदगी में कभी भी भौतिक गांठ नहीं बंधता है। भौतिक गांठ का अर्थ होता है अपने हृदय के अंदर भौतिक आसक्ति या परिवार की प्रति आसक्ति या वस्तुओं के प्रति आसक्ति या पदार्थों के प्रति आसक्ति, उसको भी गांठ कहते हैं, वो गांठ नहीं पड़ता है। अगर भगवान ने किसी के ऊपर एक बार कृपा दृष्टि डाल दिया यानी देख लिया, उस व्यक्ति के हृदय में कभी गांठ नहीं पड़ेगा, ये भगवान का ताकत है। और भगवान ने जब भी मैया ने अपना रस्सी निकाली केस बंद और उसको बांधने जा रहे थे, भगवान ने देख रहे थे कि रस्सी से बांधेगी, और भगवान का दृष्टि पड़ गई, और भगवान का दृष्टि पड़ी तो भगवान के कमर में आ गई, मगर गांठ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भगवान का कृपा दृष्टि था, और कृपा दृष्टि किसी के ऊपर है तो उसका गांठ पड़ेगा ही नहीं, इसलिए उस रस्सी के ऊपर गांठ नहीं पड़ रहा था, दो उंगली कम पड़ रहा था, ऐसे कुछ कहते हैं। और कुछ कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने साधना और अपने सद्गुणों के द्वारा अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है, देखिए यहाँ ये एक महत्वपूर्ण बात है, कोई कोई सोचते हैं कि मैं कड़ाई से नियमों को पालन करूंगा, साधना करूंगा, विधि विधानों को पालन करूंगा, जिसके द्वारा मेरे को भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मगर यहाँ पे भगवान इस लीला से कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने सद्गुणों से, अपने अच्छे गुणों से कोई अगर प्राप्त करना चाहता है मेरे को, तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि हमने इस प्रकार के सद्गुण या त्याग इत्यादि से देखे, चैतन्य लीला से एक भक्त थे ना जो दूध पी रहे थे और संकीर्तन में प्रवेश करना चाह रहे थे, मगर भगवान ने मना कर दिए थे। कोई भी सद्गुणों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकता है, गुणों से नहीं। और भक्ति करने से ये सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, देवता का सारा गुण उनके अंदर अपने आप आ जाता है। और ऐसा नहीं कि अपने सद्गुणों से भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करे तो ये नामुमकिन है, ये असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सद्गुणों से मेरे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर सद्गुणों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गुण कैसे मेरे को प्राप्त करेगा या मेरे को बांध सकता है, इस प्रकार से अपना भाव को व्यक्त करते हैं। अभी इस दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने मैया को माँ न कहकर गोपी कहते हैं। तद दाम बद्धमान से सौर्भ का सकता का सह द्वंगलम न्यूनम संदत्यश्च गोपिका। माँ ने नहीं बांध पाया नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गोपिका ने नहीं बांध पाया। गोपिका का अर्थ महाराज कह रहे थे, गोपिका का अर्थ है गोपयति इति गोपी, जो गोपन करती है। गोपन का अर्थ है रक्षा करना, जैसे कि यहाँ पे मैया सोच रही थी कि मैं लाला को इन दुर्गुणों से कैसे बचाऊँ, इसकी इस प्रकार के हरकतों से उसको कैसे निकालूँ, नहीं तो आगे जब बिगड़ जाएगा, जाएगा। इस प्रकार की भावों से बचाना, हमेशा लाला के प्रोटेक्शन का कार्य करना, उसको कहते हैं गोपी। इसलिए इस भाव को लेकर वो बचाना चाह रही थी मैया ने हर समय के लाला को, इस भाव को लेकर सुखदेव गोस्वामी ने मैया को गोपी का गोपी करके ये शब्द को उच्चारण कर रहे थे। इसलिए भगवान ने नहीं बंद रहे हैं और दो उंगली कम पड़ गया। मगर सनातन गोस्वामी कहते हैं, सनातन गोस्वामी अपने टीका में कहते हैं दो उंगली कम पड़ गया बड़ी बात नहीं, दो उंगली कम पड़ गया थोड़ा सा कम हो गया। जैसे कि हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, अरे कथा में कितने लोग आए थे, अरे बाप रे संसार भर के लोग आए थे। मतलब थोड़े ना कि अमेरिका और इंग्लैंड इत्यादि से सब आ गए, संसार मतलब क्या है, सारा पृथ्वी से, विदेशों से सब आना। कहते हैं कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, संसार भर के लोग आए थे। इसका भाव यह है कि बहुत लोग आए थे। ऐसा वैसे ही अगर कभी कभी बोलते हैं कि खाया, हाँ दो रोटी खा के आ गया। दो रोटी खाया मतलब थोड़ी ना दो ही रोटी खाएगा, थोड़ा सा खा के आया। वैसे अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए कहते दो उंगली ही कम पड़ रहा था। सनातन गोस्वामी अपना भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं दो उंगली मतलब थोड़ा सा कम पड़ा होगा, इसलिए दो उंगली कम पड़ा, सनातन गोस्वामी कहते हैं। मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं, ये एक सिद्धांतिक दृष्टि से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको पेश करते हैं, क्यों दो ही उंगली कम पड़ रहा था लाला को बांधते समय। वो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, माँ ने जब ये डांटने लगी और उनको दूध नहीं पिलाऊंगी, माखन नहीं दूंगी और तुमको खेलने के लिए नहीं छोड़ूंगी यह कहने लगी और बांध दूंगी, यह सोचकर लाला ने डर गए। क्यों डर गए, क्योंकि उनको खेलने नहीं दिया जाएगा, खेलने नहीं दिया जाएगा, और लाला चाहते थे, खेलना चाहते थे। इसीलिए उस समय लाला की, भगवान की जो शक्तियां होते हैं, विभूता शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, ये सब शक्तियां रंज हो रही थी माँ के ऊपर। अरे इसको मालूम नहीं ये कौन है, किसको चिल्ला रही है, ये तो स्वयं भगवान है, इनकी इच्छा मात्र से सब कुछ पूर्ण होता है, ये उसको कैसे डांट सकती है, हम इनको आज, इस माँ को आज दिखा देंगे कि ये भगवान है। और ये सोचकर वो माँ के ऊपर रंज हो रही थी। विभूता शक्ति का अर्थ होता है जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, जितने सारे ऐश्वर्य वो प्रकट हो रहे थे। और सत्य संकल्प का अर्थ होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सत्य संकल्प का अर्थ है भगवान एक बार इच्छा करने मात्र से, संकल्प मात्र से जो चीज़ों को पूर्ण कर देती है। भगवान ने कुछ चीज़ का इच्छा किया और उसको तुरंत पूर्ण किया, उस प्रकार की शक्ति को कहते हैं सत्य संकल्प शक्ति। ये दो शक्तियां बहुत तेजी से माँ के ऊपर रंज हो रही थी, और हम बांधने नहीं देंगे तुमको, तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा बेटा है, ठीक है तुम्हारा बेटा है मगर भगवान है ये है? तुम अगर अपना बेटा समझ रहे हो अभी जान लो कि ये भगवान है, नहीं बांध पाओगे। ये सोचकर दोनों शक्तियां रंज हो रही थी, अपना प्रभाव को दिखा रही थी, और ये दो शक्तियों की वजह से उनका दो उंगली कम पड़ रहा था। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये आगे जाके दो वृक्षों का उद्धार करने वाले हैं, इसीलिए दो उंगली कम पड़ रहा था। कुछ भक्त ऐसे भी कहते हैं कि आगे जाके दो वृक्षों को उद्धार करने वाले हैं। और तो मेन भाव को प्रकाशित करते हैं कुछ भक्त लोग, कहते हैं कि ये दो उंगली कम पड़ने के पीछे रहस्य क्या है, भक्तों का प्रयास और भगवान की कृपा। जब तक भक्तों का प्रयास संपूर्ण नहीं हो जाता है तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है। तो यहाँ पे भक्त का कृपा, भक्त का प्रयास पूर्ण नहीं हो रहा था, मैया का प्रयास पूर्ण नहीं हो रहा था, उसमें थोड़ा सा कमी थी, इसलिए एक उंगली कम पड़ी। और प्रयास कम होने के कारण भगवान की कृपा में कमी थी, भगवान कृपा नहीं कर रहे थे, इसलिए और एक उंगली कम पड़ी। इस प्रकार से दो उंगली कम पड़ रहा है। जब भी मैया का प्रयास पूर्ण हो जाएगा तभी लाला का कृपा आएगी, और ये दो उंगली तब पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों ने व्यक्त करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ भक्त कहते हैं जिस प्रकार से नदियां बहते हुए आ आकर किस में समा जाते हैं, समुद्र में, उसी प्रकार से क्योंकि अभी मैया जैसे ही दो उंगली कम पड़ी, मैया ने अपने घर से दूसरा रस्सी मंगाने लगी, गोपियों को बोलने लगी रंग दूसरा रस्सी लेके आओ। अगर खुद जाएगी तो ये तो फिर से 9-2-11 हो जाएगा, फिर भागेगा और फिर कितना दौड़ेगी उसके पीछे। अभी वो हाथ को छोड़ नहीं रही थी, हाथ को पकड़ी और बोली अभी छोड़ूंगी नहीं और जाऊंगी भी नहीं यहाँ से जब तक बांधूंगी नहीं इसको। कम पड़ी तो गोपियों को बोली और जाओ रस्सी लेके आओ, और घर से लाला के सब रस्सी खत्म हो गया, और वो बोले कि सब हंस रहे थे, ये इसमें बताए। एवं स्वदेह दामानी यशोदा संदद्यपि गोपिनम सुस्मयंतीनम स्मयंती विस्मिता भवत। गोपियों ने देख रहे थे जैसे कि पूरा गोकुल में घूम घूम कर आए, तो सभी लोग देखे उनके पीछे पीछे आए, क्या हो गया माँ बेटों को आज, और पीछे पीछे आए देखे तो अरे इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, क्यों बांधना चाह रही है और बंध नहीं रहा है, दासियों को बोल रही है रस्सी लाओ और घर का सब रस्सी ला ला के खत्म होते जा रहा है। स्वदेह दामानी यानी स्वगेह दामानी का अर्थ होता है अपने घर के सारा रस्सी खत्म होने लगा, और ये देखकर वहां के जो वृद्ध गोपियां और उनके माता यशोदा के सखियां थे सब हंस रहे थे। और कैसे हंस रहे थे, सुस्मयंती नाम और स्मयंती, स्मयंती का अर्थ होता है माता स्वयं भी हंस रही थी, आश्चर्य भी हो रही थी और हंस भी रही थी, देखिए हंस रही थी बंद नहीं रहा है और गोपियां हंस रही थी और गोपियों को बोल रही थी तुम लोग हंस क्यों रही हो, जाओ तुम्हारे तुम्हारे घर से रस्सी लेके आओ मैं बांधूंगी लाला को आज। और गोपियां हंस हंस के कह रही थी देखो यशोदा जी ये तुम्हारे लाला के ललाट में बंधा हुआ नहीं लिखा है, वो कभी बंध नहीं सकता क्योंकि उसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, इसलिए इस बिना मतलब का मेहनत करना छोड़ दो, जाओ अपना काम करो, उस बच्चे को खेलने दो, खेलेगा क्यों परेशान कर रहे हो। कुछ गोपियां ऐसे बोल रही है और कुछ गोपियां बोल रही है अच्छा होगा आज इसको बांधा जाएगा हम मजा लेंगे इसका, हमको बहुत सताया था इसने और ऐसे बांध देंगे तो दोबारा कभी नटखट नहीं करेगा, और लाला इधर रो रहा है और सब गोपियां बोले कि एक बार बांध जाए तो हम इसका मजा लेंगे, नहीं तो हमको बहुत सताया था इसने। कुछ गोपियां ऐसे सोच रही थी और कुछ गोपियों को माँ ने डांट रही थी तुम लोग हंस क्यों रही हो देख देख कर मेरे परेशानी को, जाके लेके आओ अपने अपने घर से रस्सी, और सभी लोग अपना अपना रस्सी लेके आए। और कुछ भक्त कहते हैं कि सब रस्सी खत्म हो जाने के बाद गायों को बांधने वाले रस्सी लेके आए, पुरुषोत्तम महाराज आए थे वो कह रहे हैं कि कौन से गायों को बांधने वाले, कभी कभी गायों को दूध दूहते समय ये पीछे वाले दो पैरों को बांधने के लिए एक छोटा सा पतला रस्सी होता है, गायों को कोई देखा होगा अगर गाय को दूहते समय दो पीछे वाले पैर को बांधते हैं क्योंकि कभी कभी गाय लात मारती है, तो पीछे वाले पैर को बांधेंगे और फिर दूध दुहेंगे। बकरी इत्यादि का दूध दुहने के लिए पैर को बांधने की आवश्यकता नहीं रहता है, वो जो ग्वाले होते हैं जो बकरी इत्यादि रखते हैं बकरी के एक पैर को पकड़कर अपने पैर में दबा देंगे, दबा कर बकरी दूध निकाल लेते हैं, और गाय को तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, उसको दूसरे रस्सी से बांधना पड़ता है पीछे वाले पैर को, तो वो रस्सी लेके आए सभी लोग और कहते हैं कि अरे ये गौओं को बांधने वाली रस्सी कैसे भगवान बांध सकते हैं, जो रस्सी इंद्रियों को बांधता है तो यहाँ पे इंद्रियों को बांधने वाला रस्सी क्या है, गुण त्रिगुण, त्रिगुण इंद्रियों को अपने बस में रख लेता है, तो ये तो त्रिगुणातीत है तो इनको कैसे बांध सकता है ये रस्सी, इसीलिए नहीं बांध रहे थे, वो दो उंगली कम पकड़ रहे थे। तो गोपियां हंस रही थी सुष्मयंती नाम, माता देख रही थी कि कम पड़ रहा है मगर उसको आश्चर्य नहीं हो रहा था क्योंकि उस पर ध्यान दे नहीं दे रही थी, उनके मन में एक ही ध्यान था मैं इसको कैसे दुर्गुणों से बचाऊं, बस पुत्र प्रेम और मैं इसको आज बांध के ही रहूंगी। सब गोपियां कह रहे हैं कि रानी जी ज्यादा मेहनत मत कीजिए इसको छोड़ दीजिए, यशोदा जी आज इसके भाग्य में बंधन लिखा नहीं है, माता कह रही है नहीं मैं तो आज इसके बांध के ही रहूंगी, भले ही शाम हो जाए बांध के ही रहूंगी। सुबह से लगी हुई है, सुबह उठी थी भोर और सूर्य भी नहीं उगा था, हो सकता है धूप हो गया होगा, महाराज अपने कथा में कहते हैं कि सोया हुआ उखल था और पैर के नीचे छांव के नीचे था क्योंकि अभी धूप आ चुका रहेगा ना, कितना देर घुमाया 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 लाया तो अभी सूर्य भी उग गए होंगे, और मैया बांध रही थी। हाँ अगर उस दिन रोहिणी मैया रहती तो बांधने नहीं देती, रोहिणी मैया रहती और बलदेव जी रहते रोहिणी मैया कभी लाला को बांधने नहीं देती, मना कर देती नहीं नहीं छोड़ो उसको तो उनको खेलने दो तुम जाओ यहाँ से अपना काम करो, रोहिणी माता ऐसे करती। वो भाग्यवश क्या हुआ था, रोहिणी माता उस दिन उपनंद के घर में चली गई थी, नंद बाबा के भाई के घर में चली गई थी। कुछ भक्त लोग अपने कथा में कहते हैं कि जब अभी मैया ने बांध दिया लाला रो रहे मेरे को बांध दी करके, तभी बलदेव जी वहां से आ गए थे भाग कर और आए, अरे फिर भगवान बलदेव जी को अपना शक्ति संचारित हो गया, शक्ति मतलब बलदेव जी कौन है, शेष जी हैं और शेष जी हमेशा कृष्ण की सेवा में रहते हैं, और उनको अपना शक्ति संचारित हो गया, अपना स्वरूप याद आ गया, मैं तो शेष हूँ और भगवान कैसे बांध सकता है कोई, फिर चिल्लाने लगे सामने कौन है लाला को बांधा यहाँ पर, कौन है वो सामने आए मैं आज दिखाता हूँ उसको, लाला को मेरे होते हुए कैसे बांध सकता है कोई, चिल्ला यानी भक्त लोग कहते हैं, भागवतम में तो नहीं लिखा है, भक्त लोग अपने कथा में इस प्रकार से कहते हैं। हाँ हो सकता है जब बांध दिए थे तभी रोहिणी माता ने अपने पुत्र को लेके आ गई रहेगी, और आ गई रहेगी तो बलदेव जी आए थे वहाँ देखने के लिए और चिल्लाने लगे कौन है लाला को यहाँ पे बांधा, सामने आए मैं देखता हूँ आज उसको, मालूम नहीं लाला कौन है, कृष्ण कौन है मालूम नहीं, मैं कौन हूँ मालूम नहीं, मेरा नाम राम है, आज दिखाता हूँ मेरा शक्ति। तो मैया अंदर कुछ काम कर रही थी, छड़ी लेके बाहर आई, कौन चिल्ला रहा है, अरे क्या हुआ चिल्ला क्यों रहा है, कौन बांधा लाला को, न क्या हुआ वो तो बताओ, न कौन बांधा पहले बताओ, न मैंने बांधी, आपने बांधा क्यों बांधा तुमको मालूम नहीं, फिर अपना शक्ति संचरित हुआ, क्यों बांधा मालूम नहीं है कौन है, कौन है मालूम नहीं, मैं कौन हूँ तुम कौन हो, ना ये भगवान विष्णु है और मैं शेष हूँ, हम लोग यहाँ पे अवतार लिए हैं तुम्हारे घर में, तो क्या मालूम नहीं हम कुछ कर सकते हैं, मैं एक फुंकार मारूंगा एक गर्जन करूंगा तो सारा संसार को प्रलय कर दूंगा, मैं नाश कर दूंगा। तो मैया ने बोली अच्छा ये विष्णु है और तू कौन है, तो शेष है, तुमको मेरा ही घर मिला क्या अवतार लेने के लिए, छड़ी ला दिखाते हूँ तेरे को, तेरा हुंकार या भागता कि नहीं, तो छड़ी पकड़ी तो भागे वहां से। फिर लाला ने सोचा अरे बाबरी इसको भी भगा दियो, अभी मेरा सेवक को भी भगा दिया, अभी तो नहीं छोड़ेगी, ऐसे सोचने लगी। तो ये नहीं थे उस समय, इसलिए लाला को बांधने के लिए प्रयास कर रही थी और बांध रही थी, और सारा रस्सियां उसमें सिमट गए, सब रस्सियां ला रही थी, सब रस्सियां उसमें चली जा रही थी। आश्चर्य की बात यह था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें कहते हैं, एक आश्चर्य की बात था, इतना सारा रस्सियां लाला के उसमें गांठ बांध बांध के बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, और जैसे ही बांधने जा रही थी कि सारे रस्सियां कम पड़ रही थी, कितना कम पड़ रही थी, केवल दो ही उंगली कम पड़ रही थी, ये सबसे आश्चर्य बात था, ना ही ज्यादा बड़ा हो रहा था ना ही ज्यादा कम, केवल दो उंगली। दूसरी आश्चर्य की बात है, जितना भी गांठ मार रही है वो रस्सी उतना ही पतला हुआ करता था, पहला जितना पतला था, मोटा भी नहीं होता था और गांठ भी नहीं दिखता था। इस भाव पर यहाँ पे टीका लिखते हैं कि नदियां जैसे आ आकर समुद्र में मिल जाते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे रस्सियां आ आकर उस रस्सी में मिल जाते हैं और मिलकर अपना नाम और रूप को खो देते हैं, जैसे नदी अपना नाम रूप खो देता है समुद्र में, और ये नाम और रूप खो देने के कारण ही दो उंगली कम पड़ता है, ऐसे लिखते हैं आचार्य लोग। आचार्यों का भावों को देखने से सुनने से बहुत भाव प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से मैया लाला को बांध ही नहीं पा रही थी, बहुत प्रयास करते हुए भी बांध नहीं पा रही थी, और दो उंगली ही कम पड़ने लगी। माता बहुत देर तक और शाम तक प्रयास कर रही थी। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सोमा तुसिन्न गात्रायं विश्रस्त कवर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। सोमातु अपने माँ की शीर्ण गात्राय पसीने से छूटता हुआ शरीर को देखकर, दृष्ट्वा देखकर परिश्रमं कृष्ण, कृष्ण ने अपने माता की ये पसीने से भरा हुआ शरीर और परिश्रम को देखकर कृपावश असित स्वबंधने अपने से बंधन में आ गए। ये नहीं कहते कि माँ ने बांध दिया, ना माँ ने नहीं बांधा, वो अपने से बंधन में आ गए। क्यों बंधन में आए, उन्होंने देखा कि माँ ने अत्यंत परिश्रम कर रहा है मेरे लिए, और परिश्रम करते करते पूरा पसीना छूट रहा है, शरीर भीग गया है पसीने से, और अभी तो कृपा करना चाहिए, तब बंधन में आ गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि जब ये बांधना चाह रहे थी तो दो शक्तियां क्या थी, एक विभूता शक्ति एक सत्य संकल्प शक्ति, ये बांधने नहीं दे रही थी, रंज हो रही थी हम बांधने नहीं देंगे, मगर भगवान ने जब भी देखा अपना माँ का परिश्रम, भक्तों का परिश्रम को, मेहनत को जब भी भगवान देखते हैं, अपने लिए भगवान के लिए अगर कोई मेहनत करता है, इस मेहनत को जब भगवान देखते हैं अत्यंत कृपा उभर उठता है भगवान के अंदर। पहले जो दो शक्तियाँ थी, एक है उनके ऐश्वर्य शक्ति और एक है सत्य काम शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, ये रंज हो रहे थे, भगवान ने माँ के परिश्रम को जब भी देखा भगवान के अंदर से कृपा शक्ति प्रकट हो गई तुरंत, और एक कृपा शक्ति जो है भगवान की सारे शक्तियों का रानी माने जाती है, और जैसे रानी प्रकट हो गई ये दूसरे जो शक्तियां हैं विभूता शक्ति सत्य संकल्प शक्ति गायब हो गए, कृपा शक्ति प्रकट हो गई ना, कृपा रानी है, सबसे राधा कृपा बदाने राधा रानी मानी जाती है। तो जब भी कृपा शक्ति प्रकट हो गई तो तुरंत ही अपने जो दो शक्तियां हैं ऐश्वर्य और सत्य 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 संकल्प शक्ति, ये गायब हो गए। अर्थात जैसे ही कृपा शक्ति प्रकट हुआ तब ये दो शक्तियां गायब हुए, तो ये दो उंगली कम पड़ रहा था ये पूरा हो गया। मैया ने लाला को बांध दिया। जय श्री श्री यशोदा दामोदर जी की। तो इस प्रकार से मैया ने लाला को बांध दिया। तो वहां पे यह नहीं लिखते हैं कि मैया ने लाला को बांध दिया, सुखदेव गोस्वामी यह लिखते हैं कि लाला ने अपने से बंधन में आ गए। भगवान कृपा के कारण बंधन में आ जाते हैं, उनको कोई बांध नहीं पाएगा, वो बंधन में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं माँ ने बांधते बांधते थक गई और वो विचार करने लगी कि अभी मैं लाला को बांध नहीं सकती, बांध नहीं सकती सोचे। और भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनके सामने हार जाए, कभी नहीं। भगवान की बाल लीलाओं में और क्रीड़ाओं में देखते हैं, भगवान अपने ग्वाल बालों से जब भी खेलते हैं कोई भी प्रकार की गेम, कोई भी प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, तो हमेशा भगवान हार के पक्ष में रहेंगे, हमेशा हारते रहेंगे। अपने भक्तों से हारने में उनको ज़्यादा मजा आता है। इसलिए यहाँ पे जब ये दोनों का रंजघंस चल रहा था कि मैया बांध रही थी ये बंध नहीं रहे थे, और मैया हार मान लगी कि मैं बांध नहीं पाऊँगी, भगवान सहन नहीं कर पाए, बोले कि मेरा भक्त मेरे सामने हार जाए मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरा भक्त ही जीतना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माँ ने बांधने का विचार त्याग दिया तब श्री भगवान ने बंध गए, और श्री भगवान भक्तों से हारने के लिए राजी हो जाते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों से हार जाते हैं। भगवान सोचे कि अभी मैया हारेगी यह ठीक नहीं है, मैं ही हार जाऊंगा उनके सामने, यह सोचकर भगवान बंध गए। भगवान ने भक्तों के सामने हार जाते हैं। और ये जो विभूता शक्ति सत्य संकल्प शक्ति, इसको इस बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रस्तुत करते हैं। 19 नंबर श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अभी वो अपना भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान को बांधने के बाद, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य बस्यता स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं बसे। कहते हैं कि एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्य बस्यता, यहाँ पे इस पूरे अध्याय में भगवान हरि की भृत्य बस्यता का जो भृत्य बस्यता प्रकट होता है। भृत्य बस्यता का अर्थ होता है, भृत्य का अर्थ होता है दास यानी नौकर, वश्यता का अर्थ होता है अपने नौकर के बस में आ जाना, यानी अपने दास के बस में आ जाना, अपने भक्तों के बस में आ जाना, भृत्य वश्यता। इस प्रकार के भगवान ने क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना भक्त भृत्य वश्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने टीकाओं में लिखते हैं कि भगवान की लीलाएं को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु इनको केवल अपने भक्त समझ पाते हैं। श्री भगवान भक्तों के बस में होने के गुण जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, वे मन से भी अधिक तेज भागने वाले हैं, फिर भी मैया पकड़ ली थी। वो लक्ष्मी का पति हैं, फिर भी वो चोरी कर रहे थे। स्वयं को जमराज भी डरते हैं, फिर भी वो छोटे से छड़ी को देख के डर रहे थे। इसमें श्री कृष्ण की अत्यंत शक्ति का और माँ की भक्त वत्सलता और प्रेम का प्रतिपादित होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हरिण भृत्य वश्यता। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोगों को प्राप्त होता है भगवान किस प्रकार से बंध जाते हैं, बस में आ जाते हैं। ये जो कृष्ण भक्ति है ये भगवान कृष्ण से भी अधिक ताकतवर है। तो ये कैसा संभव है, भगवान से कोई भी चीज अधिक नहीं है। मत्तः परंतर न अन्यत, मेरे से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मगर भक्त लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति भगवान से श्रेष्ठ होता है, कैसा संभव है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही इतना ताकत है कि भगवान को बांध सकता है। अगर भगवान किसी व्यक्ति को कोई बांध दिया इसका क्या मतलब, जो बांधा वो ज्यादा ताकतवर है। और कौन बांधा, और भृत्य वश्यता का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि उनका दास बांध दिया बस में आ गया, नहीं। दास का जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उस भक्ति के बस में भगवान होते हैं, उस व्यक्ति के बस में नहीं। उस व्यक्ति का जो भक्ति है उस भक्ति के बस में भगवान हो जाते हैं, ये इसका भाव है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक है, क्लेशाग्नि सुभदा मोक्ष लभुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणीय चसा। ये जो शुद्ध भक्ति है ये श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान कृष्ण को भी आकर्षण करने की ताकत इसके पास रहता है। भगवान कृष्ण शब्द ही सबको आकृष्ट करने वाला है, सारा संसार कृष्ण से आकृष्ट है। संसार का मतलब पेड़ पौधे वृक्ष, पेड़ पौधे और जानवर मनुष्य सब कुछ। गोकुल में देखिए, ब्रज में सारे गोपियां उनसे आकृष्ट हैं, सारे वृद्ध गोपियां आकृष्ट हैं, सारे गोप आकृष्ट हैं, सारे पशु पक्षियां आकृष्ट हैं, तो वृक्ष कैसे, वृक्ष भी आकृष्ट है। जब भी भगवान ने अपने बछड़ों को छोड़कर गायों को चराने लगे थे, तभी गाय चराने के लिए बहुत अंदर जाने लगे। वहां पे सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखते हैं कि सारा वृक्ष जो है भगवान को प्रणाम करने के लिए पूरा झुक रहे थे। मतलब वृक्ष भी वृक्षों को भगवान आकर्षण करते हैं। रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसायन सिंध में लिखते हैं कि हाँ, मगर ये कृष्ण भक्ति जो है ये सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण को भी आकर्षण करता है। श्री कृष्ण आकर्षण। श्रीमती राधा रानी भगवान को कहते हैं मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ है मदन अर्थात कामदेव। कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं भगवान, इसलिए मदन मोहन। मगर राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी ऐसी है कि मदन मोहन को भी मोह लेती है, और कृष्ण भक्ति की स्वरूप है राधा रानी, और इसीलिए ये कृष्ण को भी अपनी तरफ खींच लेती है। अतः कृष्ण भक्ति में इतना पावर है। दूसरा कोई वस्तु नहीं है कि कृष्ण को अपने बस में रखने के लिए, केवल कृष्ण भक्ति ही, प्रेम भक्ति ही, शुद्ध भक्ति ही कृष्ण को आकर्षण कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे ये बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भगवान वृत्ति वश्यता कैसे होते हैं, क्योंकि वृत्ति की अपने दास की भक्ति के बस में भगवान बंध जाते हैं, हो जाते हैं। भगवान इस बात को स्वयं भी कहते हैं श्रीमद् भागवत की 11वें अध्याय की 11वें स्कंद की 14वें अध्याय की 20 नंबर श्लोक में, न साधयति माम, यानी मेरे को प्राप्त करने के लिए योगम न सांख्यम धर्मम उद्धव। हे उद्धव, उद्धव को कहते हैं भगवान, हे उद्धव मेरे को प्राप्त करने के लिए या मेरे को योग के द्वारा या कोई भी धर्म के द्वारा या सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग का अर्थ होता है शास्त्रों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। सांख्य योग का जैसे कि पुंखान पुंख सबको अलग अलग करके पढ़ना, उसको कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग के द्वारा और ना ही धर्म के द्वारा। यहाँ पे धर्म होता है वर्णाश्रम धर्म। कोई भी अगर कड़ाई से वर्णाश्रम को धर्म को अगर पालन करता है, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे उसको। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगा। और ना साधयति अस्त, ना ही साधना के द्वारा, तपस्या ना ही तपस्या के द्वारा, ना ही योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। मैं केवल भक्त्या हम एक ग्राह्य, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं ग्राह्य हूँ। केवल भक्ति के द्वारा मेरे को प्राप्त कर सकता है। कोई योगी प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई विद्वान प्राप्त नहीं कर सकता है, और कोई भी अपना धर्मों को पालन करने वाला प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं। केवल भक्ति करने वाला ही मेरे को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान को मैया ने बांध दिया यहाँ पे। केवल भक्ति से, प्रेम की डोरी से बंध जाते हैं वो। नेमं विरंचन भव न श्री रयंग संशया प्रसादम ले भीरे गोपी यतत्प्यापी विमुक्तिदात। यहाँ पे बहुत अच्छा बात कहते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भगवान जो है, भगवान के भक्त यशोदा मैया और दूसरे भक्तों से तुलना करते हैं। भगवान के तो सब भक्त हैं, और ये पूरा संसार का सारा जीवत्व भक्त भगवान के ही दास हैं, भगवान के दास है। अकेले कृष्ण अकेला, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल इस कृष्ण ही भगवान है, और उनको छोड़ने से बाकी सब भगवान के भृत्य है, दास है। मगर उन भृत्यों में भी श्रेष्ठ होते हैं कुछ। उनमें से श्रेष्ठ कौन कौन है? सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि विरंचो ब्रह्मा जी, ना भवो यानी शिव, और श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, और सबके आगे न लगाते हैं। न लेभीर, लेभीर का अर्थ है प्राप्त करना। न लेभीर का अर्थ है प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कौन प्राप्त नहीं कर पाते हैं? ब्रह्मा जी, और न लेभीर शिव जी और लक्ष्मी जी। ये तीन कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, जिनको की सृष्टि सर्जना करने की सेवा भगवान भगवान ने दिया था वो आदि कवि है। और शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथाशंभु, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ है। और श्री जी कौन है? श्री स्वयं लक्ष्मी जी। इन तीनों को भी प्राप्त नहीं होता है, इन तीनों को क्या प्राप्त नहीं हो रहा है? ब्रज में वास करना, या इस प्रकार की गोपी को जो मिला, न ले भी रे गोपी, गोपी को जो प्राप्त हुआ, कौन गोपी को प्राप्त हुआ? माता यशोदा को। माता यशोदा को क्या प्राप्त हुआ? इस प्रकार की बाल लीलाएं कृष्ण का, इस प्रकार की कृष्ण का जो कृपा प्राप्त हुआ है, ये ना विरंची, ना भवो, ना श्री। लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो कि स्वयं भगवान की अर्धांगिनी है, वैकुंठ में हमेशा भगवान की पाद सेवा में लगी रहती है, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। शिव जी हमेशा भगवान की राम नाम का जप करते रहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। पार्वती पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या जप करते हो? आपको सब लोग जप कर रहे हैं, आप क्या जप कर रहे हो? ना मेरे को भगवान की राम नाम पसंद है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। ये राम नाम जो है भगवान के सहस्र नामों के बराबर है, और इन नामों को मैं जप कर रहा हूँ हे देवी। इस प्रकार के भगवान शिव इतना भगवान के भक्ति करते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ, और जिस प्रकार से माता यशोदा को प्राप्त हुआ है इस प्रकार का प्रेम, और इस बात को प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान तो आत्मा राम होकर भर होकर भी उनको भूख लगने लगा, और आत्मकाम होकर भी, आत्मकाम का अर्थ होता है जिनका इच्छा मात्र से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, आत्मकाम होकर होकर भी उनको प्रेम पाने की इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, और शांत और शुद्ध सत्व में रहने वाले होकर भी वो क्रोध कर रहे थे, लक्ष्मीपति होकर भी चोरी कर रहे थे, सांद्रानंद होकर भी दुख कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, केवल माँ की प्रेम की वजह से, और दूसरा कोई चीज नहीं है जिनको उनके अपने बस में रख दे या उनके कार्यों को बाधा पहुंचाए, केवल माँ की वजह से। और कैसे बस में आए? स्व बसेनो, और वो कभी भी दूसरे के बस में नहीं रहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, फिर भी माँ के बंधन में आ गए थे। यस्येदं शेखरंग बसे, यस्येदं शेखरंग बसे का अर्थ है ये सारा संसार, एंटायर यूनिवर्स, और ये सारा संसार और सभी देवी देवताएं उनके बस में रहते हैं, जो कि सुप्रीम यानी सर्व नियंता है, सबको नियंत्रण करने वाले हैं, उनको भी माता यशोदा ने अपने प्रेम की बंधन से, प्रेम की डोरी से बांध दिया था। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। नायं सुपापी भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मन भूतानां यथा भक्तिर मतामिह। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु मनधर्मियों, घोर तप करने वाले, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले, अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए ये सुलभ नहीं है। ये सीधा सीधा शब्दों से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और हमको अभी वापस जाना है तो इस चीज को लेके जाना है। क्या है, क्या ये चीज है? भगवान कभी भी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति, मनोधर्म के वाले व्यक्ति और तप करने वाले व्यक्ति, योगियों से, योगियों इत्यादियों को प्राप्त नहीं होते हैं, केवल भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्तियों को ही, भक्तों को ही भगवान प्राप्त हो पाते हैं, जिस बात को यहाँ पे दर्शाया जाता है। और इस प्रकार के जो कृपा प्राप्त हुआ माता यशोदा को, जो कि शिव जी को, ब्रह्मा जी को नहीं मिलता है, तो इस बात को हमने पहले उठाया था। क्या, किस बात पर? ब्रह्मा जी ने, परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न पूछा था किस प्रकार से माता यशोदा को इतना भगवान का ये कृपा प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी बोले थे कि वो द्रोण और धारा ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी भी उसमें नहीं जा पा रहे हैं, उसमें घास का तिनका बना दीजिए बोल रहे, वो भी नहीं हो रहा है, और उनके आशीर्वाद से कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ पे ये प्रतिपादित करते हैं, दर्शा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा की ये पुत्र वात्सल्य प्रेम के वजह से भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुआ है, और यही एक ही उपाय है भगवान को प्राप्त करने का, वो है भगवान का प्रेम, और किसी के आशीर्वाद इत्यादि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये प्रेम, इस प्रकार के प्रेम की पराक्राष्ठा केवल ये नित्य सिद्ध माता का ही हो सकता है, कोई साधन सिद्ध व्यक्ति नहीं हो सकता, इस प्रकार का भक्ति नहीं करता, इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार से इस अध्याय का समापन करते हैं, और दो श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायं मातरि प्रभु आद्राक्षिदर्जुनो पूर्वे ग्राह्य को धनदात्मजो। जब माता यशोदा ने घरेलू कार्य में अत्यधिक व्यस्त थे तभी भगवान कृष्ण ने दोनों जुड़वा वृक्षों को देखा और जिन्हें जमलार्जुन कहा जाता है ये पूर्व युग में कुबेर के दो पुत्र थे। पुरा नारद शापेन वृक्षातंग प्राप्तो मदात नलकुबर मणिग्रीवा भीति व्याख्यम श्रीयान्वितो। पूर्व पहले कुछ बहुत साल पहले नारद मुनि के शाप के वजह से कुबेर के दो पुत्रों को अभिशाप कर इन्होंने वृक्ष हुए थे। नारद मुनि ने इनको शाप के साथ साथ आशीर्वाद भी दिए थे कि मैं इनको उद्धार करूं, इनके सामने जाऊं, इसलिए अभी मेरे को जाना पड़ेगा इन दोनों को उद्धार करने के लिए। यह सोचकर भगवान ने धीरे धीरे से उन दोनों वृक्षों की ओर बढ़े और दोनों वृक्षों की ओर बढ़कर माता यशोदा ने घर में चली गई थी। दोनों वृक्षों को और घसीटते घसीटते हुए जा गए, दोनों वृक्षों से बीच से बाहर निकल गए और उखल अटक गया और उसको खींचने लगे। बच्चे देख रहे थे तब गिरा दिए। गिराए तो दो बहुत तेजस्वी व्यक्ति निकले, भगवान को प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करने लगे। भगवान बोल रहे कि भले ही आप लोग भक्त नहीं है, मेरा कोई भक्ति नहीं किया, मगर मेरा भक्त ने वचन दिया था कि भगवान स्वयं आएंगे आपको दर्शन देंगे, इसलिए मेरे को आना पड़ा। और अभी आप लोग जाके अपने स्वधाम में वापस जाओ और मेरा भक्ति करो। इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद दिए। नंद बाबा इत्यादि बाहर आकर आवाज़ हुआ जोर से, नंद बाबा बाहर आकर देखे कि कैसे वृक्ष गिर गया और सब आश्चर्य प्रकट हो रहे थे। बच्चे को कुछ हुआ नहीं, नंद बाबा हंसने लगे, इसको बांध दी थी मैया ने, खोल दिए। पूछे कैसे हुआ तो बच्चों ने बताने लगे कि लाला ने तो खींच खींच के इसको गिरा दिया। कोई विश्वास नहीं कहा, विश्वास नहीं किया, तुम बच्चे ऐसे ही बोलते रहते। उस समय भी सकट को भी तोड़ दिए थे तो कोई विश्वास नहीं किया, बच्चे बोले। असलियत में ये बच्चे हो बूढ़े हो, कृष्ण तत्व को जानने के लिए बच्चे बूढ़े और पढ़ा लिखा या अनपढ़ में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान कृष्ण का कृपा जिसके ऊपर होता है और जिसको दिखाई पड़ना रहता है वो देखते हैं, उनको जान लेते हैं। कृष्ण तत्ववेता जो है वो कोई भी हो सकता है, अगर चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, अगर जो कृष्ण के तत्व से जानता है वो प्रस्तुत कर सकता है। और यहाँ पे कृष्ण तत्ववेता ये बालक थे, मगर उनके तत्वों को मान नहीं रहे थे, कि बालकों का बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस प्रकार के भगवान की बाल लीलाओं का हम 3 दिन श्रवण किए और मेरा एक कृक्ष स्वर को और कंठ को आप लोगों ने इतना दिन देर तक बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री दामोदर लीला की, दामोदर मास की, आप सब की जय हो।